कीर्तन गान नर्तन पलो
प्रेमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद्गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैर् अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वैर् पूर्वतरं कृतं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैर्पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैर्पूर्वतरं कृतम्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्यों से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्य यथा सूर्यदेव विवस्वान के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम यहाँ पर भगवद गीता अध्याय 4 चर्चा कर रहे हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं किस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान भगवान द्वारा प्रदत्त किया जा रहा है। इसी अध्याय में भगवान बताते हैं पूरी प्रणाली एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु, कि कैसे परंपरा द्वारा ये पूरी प्रणाली अर्जुन को प्रदान की जा रही, मतलब ये प्रणाली कैसे आ रही है, कैसे भगवान ने ज्ञान सूर्य विवस्वान को बताया, विवस्वान ने ज्ञान अपने पुत्र मनु, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इस प्रकार से ज्ञान अर्जुन को दिया। तो ये दिव्य ज्ञान भगवान अर्जुन को प्रदान कर, और अर्जुन भगवान को प्रश्न करते हैं कि कैसे मैं मानूं ये ज्ञान आपने शुद्ध विवस्वान को दिया, आप और मैं एक ही समान है, लगभग आपका आयु मुझसे ज़्यादा नहीं है, तो कैसे मैं मानूं कि आपने ये ज्ञान शुद्ध विवस्वान को दिया। तो फिर भगवान अपना दिव्य अस्तित्व अर्जुन को बताते हैं। भगवान बताते हैं कि मैं भूतानाम ईश्वरोपि सन, ऐसा प्रतीत होता है मैं आप लोगों के बीच में हूँ। भगवान की बाल लीलाएं, भगवान की गृहस्थ जीवन की लीलाएं हम देखते हैं, भगवान के दैनिक कार्यकलाप देखते हैं। तो एक बद्ध जीव वो सामान्यतः भगवान को अपने समान या अपनी ही श्रेणी का एक व्यक्ति सोचता है, मेरा जन्म हुआ है, कृष्ण का जन्म हुआ है, मैं भी कार्य कर रहा हूँ, कृष्ण भी कार्य कर रहे हैं। तो भगवान अपना वास्तव में दिव्य पद जो है वे स्थापित करते हैं। भगवान अर्जुन कहते हैं भूतानाम, मैं भूतानाम मतलब जिन्होंने शरीर लिए हैं उन्हीं के बीच में हूँ, लेकिन मैं ईश्वरोपि सन, मैं आप सबका ईश्वर हूँ, मैं आप सबके समक्ष जरूर हूँ लेकिन मैं आपकी तरह बद्ध जीव नहीं हूँ। तो भगवान बता रहे हैं अजोपि सन अव्यय आत्मा, कैसे भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अव्यय, भगवान का शरीर दिव्य है, उसका कभी हास नहीं होता है, हमारी तरह मृत्यु पर्यंत नहीं होते हैं। तो ये अपना दिव्य पद भगवान स्थापित करने के बाद भगवान बताते हैं कि हम भी कैसे दिव्य बन सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, हम भी इस जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। भगवान बताते हैं भगवान के इन दिव्य जन्म तथा कार्यकलापों को समझने से। और फिर भगवान बताते हैं कैसे कई लोगों ने ये दिव्य पद को प्राप्त किया। वीतराग भया क्रोध भय क्रोध मन मया माम उपाश्रित बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता। तो भगवान का ये जो दिव्य भाव है मद भावम कैसे प्राप्त किया, ये सब भगवान अर्जुन को बताते हैं। फिर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि इस जगह में जो बद्ध जीव हैं भौतिक अभिलाषा के कारण प्रकृति के तीन गुणों में आते हैं, और उन तीन गुणों के अंतर्गत उनका विभाजन होता है। ये मनुष्य समाज का विभाजन कैसे होता है, चातुर्वर्णीय मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये विभाजन कैसे भगवान के द्वारा होता है समाज का, ये वर्णन है। और कैसे बद्ध जीव होने के कारण भौतिक अभिलाषाएं उनके हृदय में होने के कारण वे कृष्ण के दिव्य अस्तित्व को नहीं समझकर अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं, अपनी भौतिक अभिलाषा तुरंत ही पूर्ण करने के लिए। कांक्षंतम कर्मणाम सिद्धिम यजंती इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवती कर्मजा। तो ये सारी शिक्षा देने के बाद भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मैं इस जगत में होने के पश्चात भी नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं किसी कर्म की अभिलाषा नहीं करता हूँ और ना ही कोई कर्म फल से मैं प्रभावित होता हूँ। और जो ये भली भांति जानता है, इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न सबध्यते, जो मेरी इस दिव्य अवस्था को जानता है, जिसने इस दिव्य अवस्था को साक्षात्कार किया है, वो भी ये कर्मों के बंधन में नहीं लगता। तो ये शिक्षा देने के बाद अर्जुन का जो प्रश्न है, क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए, अर्जुन का प्रश्न है। और अर्जुन का प्रस्ताव है युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन कारण देते हैं कि युद्ध करने से क्या होगा, अनर्थ होगा युद्ध करने से। हम देखते हैं पहले अध्याय में अर्जुन ने बहुत सारे ऐसे कारण दिए। तो वो कारण के उत्तर में भगवान यहां अर्जुन को बताते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए उसकी प्रक्रिया कैसे जानना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम सबके जीवन में भी अवस्था हमेशा रहती है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अधिकांश वर्तमान समय में तो लोग इतने बुद्धिमान नहीं है, इतना सोचते नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वे जानते नहीं है, उनको जानने की इच्छा भी नहीं है। वर्तमान समय में लोग भाग रहे हैं, आप उनको कहेंगे आप क्या कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको पता है, परिणाम होता है क्या यही नहीं पता है उनको। जैसे हम देखते हैं पूर्व काल में भी ऐसा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कुछ सोचो मत, जो अच्छा लगे वो करो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेद यावत जीवेद सुखम जीवेद। योजनाएं क्या है, जैसे भी जियो वो महत्वपूर्ण नहीं है आप कैसे जी रहे हो, लेकिन महत्वपूर्ण है जैसे भी जियो सुखी जियो। तो यही विचारधारा है आज के समाज की, और जो मार्गदर्शन दे रहे हैं वो भी यही विचारधारा में, सुखी जियो। भस्मी भूतस्य देहस्य किम पुनरागमनो भवेत, जब हम कहते हैं लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम होता है, हर एक कर्म के साथ उसका परिणाम जुड़ा हुआ है, कर्म के साथ कर्म फल है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा आपको पता है, बोले परिणाम किसने देखा है, किम पुनरागमन भवेत, मृत्यु के बाद क्या होता है। तो ये पूरे समाज की वर्तमान विचारधारा है, कोई सोचना नहीं चाहता है, कोई जानना नहीं चाहता। इसीलिए शास्त्र के अनुसार, पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार वर्तमान समाज है वो आसुरिक समाज है। भगवद्गीता भगवान बताते हैं क्या लक्षण है एक असुर का, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुर आसुराः, एक असुर है वो नहीं जानता है क्या करना, क्या करणीय है और क्या करणीय नहीं है, जानता नहीं है और कोई विचार करने की चेष्टा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये स्थिति है। तो यहां भगवान अर्जुन को जो उत्तर दे रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, बच्चों को पीछे रख सकते हैं। तो यहां भगवान जो अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं उसमें भगवान अर्जुन को सही और गलत की पहचान, उसका निष्कर्ष निकालना, उसकी पद्धति भी प्रदान कर रहे हैं, क्या करना और कैसे जानना, क्या करना क्या नहीं करना, ये विडंबना है ना हमेशा। तो भगवान क्या कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेर अपि मुमुक्षुभिः, पूर्वेर पहले पूर्व काल में मुमुक्षुभिः ऐसे महान महाजन थे जिन्होंने ये सब मेरे दिव्य अस्तित्व को जानकर अपना कार्य किया, कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारा और कृष्ण का संबंध क्या है, ये सब विषयों को भली भांति जानकर उन्होंने कार्य किया। पूर्वेर अपि मुमुक्षुभिः, जैसे यहां उदाहरण दे रहे विवस्वान का, भगवान कह रहे ये ज्ञान अर्जुन पहले तुमको नहीं दिया है, ऐसा नहीं कि आप पहले हो, इससे पहले भी ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को बताया, और उन्होंने इस ज्ञान को भली भांति जानकर साक्षात्कार कर कर अपने जीवन में उसके अनुसार कार्य किया। तो तुम्हें क्या करना है, कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैर पूर्वतरं कृतम्। तो बहुत सरल प्रक्रिया है, जो पहले महाजनों ने किया उसी को जानकर आप इसी तरह से कार्य कीजिए। कुछ नया आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल है, बहुत सरल है ना। हम हमारे वर्तमान जीवन, ये जो स्थान है वहाँ वैदिक संस्कृति, ये संस्कृति ही, तो इसमें हम देखते हैं ये प्रक्रिया है। हम क्या करते हैं, जो पूर्व किसी ने किया है उसी का ही हम अनुगमन करते हैं। और जब भी कोई नई चीज आती है तो प्रश्न उठता है, क्या ये पहले किसी ने किया था, ये बदलाव जो हम कर रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। आज के वर्तमान समय में ऐसा है, नया करना है, एवरीथिंग मॉडर्न मतलब नया। हाँ, हर दो महीने में चीजें बदल जाती हैं, कार, एक तो हमारी नई कार, पुरानी कार थोड़ी सी है हम नहीं ले लेते हैं, वो एक चीज है। और आप देखिए कंपनीज भी हर एक साल में कुछ भी नहीं लेकिन चेंज करते हैं हर एक चीज। हाँ, आपका टूथपेस्ट है उसका रैपर चेंज हो जाएगा, उसके कलर चेंज हो जाएंगे, न्यू एडवांस, न्यू नई चीजें। हाँ, लेकिन वैदिक संस्कृति के अनुसार ये नई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सही क्या है वो स्थापित है, वो सत्य को बदलने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी स्थापित है क्या सही है क्या गलत है। तो ये आधुनिक विचार है, नया करना हर एक चीजों में। हम देखते हैं मंदिर में भी लोग आते हैं तो क्या नया है, विशेष क्या नया है, आज क्या बोलने वाले, कुछ वही बोलने वाले हैं या कुछ नया आप लाएंगे। हाँ, तो ये विचार शास्त्र द्वारा अनुमोदित नहीं है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं यहाँ पर क्या करना है, पूर्वे पूर्वतरं कृतम्, जो पहले महाजनों ने किया है आप कीजिए। और ये साधारण जीवन में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पोशाक है तो क्या करना है, क्या पहनना है, पहले जो पहनते थे उसी तरह से हम पहनेंगे। अगर साधारण जीवन में भी हम देखिए कृषि, तो जैसे पिता से सीखा है, पिता ने अपने पिता से सीखा है, उन्होंने अपने पिता से सीखा है, ऐसी इस तरह से जीवन चल रहा है। हाँ, और जब कोई नई चीज आती है तो विचार करने का विषय आता है, अब ये बैल हटाकर ट्रैक्टर ला दीजिए, और ये जो गो पदार्थ, गोबर इत्यादि, उनके सहयोग से जो कृषि होती थी वो हटा दीजिए, अभी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज ला दीजिए, और अभी ये दवाइयाँ, कीटनाशक दवाइयाँ ये डालिए, इससे क्या होगा, इससे आपकी फसल 4 गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगी। जब ऐसा विषय आता है तो जनरली हम सोचते हैं क्या इसकी आवश्यकता है, क्यों। हाँ, तो ये जो पहले हुआ था, पहले जो हमारे पूर्वजन कर रहे थे, और कौन कर रहे थे, कोई भी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, हम नहीं कह रहे कि कोई भी जो कर रहा है उसको अनुगमन करना है, एक ऑटो वाला क्या कह रहा है या क्या कर रहा है, एक पान वाला क्या कह रहा है, वो विषय नहीं है। यहाँ भगवान कहते हैं पूर्वेर अपि मुमुक्षु भी, मुमुक्षु भी मतलब जो वास्तव में जीवन की मूलभूत समस्याओं का निवारण जिन्होंने किया और किस तरह से वो प्रामाणिक मार्गदर्शन में जिन्होंने किया, उनके पथ का अनुगमन करना। हाँ, वो भगवान यहां अर्जुन को बता रहे हैं। तो ये एक प्रकार का प्रमाण है, किसी चीज को जानने के लिए हमें एक प्रमाण का अनुगमन करना पड़ता है। तो हमारे आचार्यगण अलग अलग प्रमाण है, उनकी श्रेणियां हमको प्रदान किए, विशेष रूप से 3 श्रेणियां हैं। हाँ, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, और तीसरा है शब्द प्रमाण। ये सब प्राथमिक चीज है, बार बार हम चर्चा करते हैं लेकिन बार बार इसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से विमोहित हो जाते हैं जब हम चीजों को सरलता से ले लेते हैं। हाँ, तो प्रत्यक्ष प्रमाण, हमारी इंद्रियों के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं इत्यादि, ये इंद्रियों के आधार पर हम ज्ञान लेते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, तो जो इंद्रिय जनित ज्ञान है वो भी अपूर्ण होगा, और वो इंद्रियों के माध्यम से बने हुए उपकरण, आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो इसी प्रमाण पर आधारित है, हमारी इंद्रियां या फिर इंद्रियों से बने हुए उपकरण, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से उसके माध्यम से ज्ञान लेते, लेकिन अपूर्ण है। इंद्रियां और इंद्रिय जो हमने उत्पन्न किया है वो सब अपूर्ण है, तो ये ज्ञान का ज्यादा आधार नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब अनुमान करते हैं, कुछ थोड़ा सा ज्ञान है और उसके आधार पर हम और ज्ञान विश्लेषण करते हैं, ऐसा हुआ था तो ऐसा भी होगा। आज की आधुनिक विज्ञान की जो भ्रांतियां हैं, डार्विन्स थियरी, बिग बैंग थियरी, ये सब इसी पर आधारित है। अनुमान करते हैं विस्फोट हुआ होगा शायद, ऐसा अनुमान है, ऐसा अनुमान है कि एक बंदर से मनुष्य आ गया होगा। और हमारे तर्क भी, जो हम तर्क करते हैं ऐसा वैसा, तो ये सब हमारे इसी श्रेणी में आता है। और तीसरा जो प्रमाण है, जो वास्तविक प्रमाण है, जिसे कहते हैं शब्द प्रमाण, जो अपौरुष है, किसी साधारण पुरुष की रचना नहीं है, उसकी इंद्रियों से या इंद्रियों के बने हुए उपकरण से या उसके अनुमान, ये विषय नहीं है। शब्द प्रमाण मतलब अपौरुषेय, भगवान के द्वारा ये ज्ञान, जो सृष्टि के रचयिता है उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि का पूरा ज्ञान प्रदान होता है, तो ये है शब्द प्रमाण। उसी प्रमाण का एक अंश यहाँ भगवान जो हमको बता रहे हैं, ये पूर्वैर पूर्व तरम कृतम, जो पूर्वजों ने परंपरा में आते हुए किया है, उसे कहते हैं ऐतिह्य। ऐतिह्य यानी ऐतिहासिक, ऐतिह्य प्रमाण। तो यहां भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि निष्कर्ष कैसे करना, क्या करना क्या नहीं करना, पूर्वजों ने। और वो क्या, कौन है वो? महाजन है, सूर्यदेव जैसे यहां उदाहरण है, वैसे महान महाजनों का वर्णन है। जैसे महाभारत में भी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा आती है, महाजनो ये न गतस्व पंथा, किस मार्ग का अनुगमन करना। बहुत सारी विविधताएं हैं, क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है? महाजन ये न गतस्व पंथा, जो महाजनों ने किया है, आचार्यों ने जो किया है वो करना। क्यों? क्योंकि वो वही करेंगे जो शास्त्र में है। जो महान आचार्यगण है, महाजन है, वे वही करेंगे जो शास्त्रों में है। आचिनोति य शास्त्राणी, एक आचार्य जो शब्द, उनको ये पद दिया जाता है जो शास्त्रों को भली भांति जानते हैं, शास्त्र का निष्कर्ष जानते हैं और अपने जीवन में शास्त्र के अनुसार ही कार्य करते हैं, अपने आचरण से लोगों को सिखाते हैं। अपने शब्दों से तो सिखाते ही हैं, लेकिन अपने आचरण से भी लोगों को सिखाते हैं। आचिनोति य शास्त्राणि तेन आचार्य स्थाप्यत्यपि, तो अपने आचरण से स्थापित करते, तो उनको आचार्य पदवी दी जाती है। तो यहाँ महाभारत में वर्णन है महाजनों का, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैयासखी वयम। वयम ये कौन कह रहे हैं? यमराज। यमराज बता रहे हैं कि वास्तव में ये जो शास्त्र का जो मर्म है वो कौन जानते हैं? तो ये कहते हैं 12 महाजन जानते हैं, स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद नारद मुनि, शंभु शिव जी, कुमार चतुष्कुमार, कपिलह भगवान के अवतार कपिल देव, मनु प्रथम जीव मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज, वैयासकी, वैयासकी मतलब व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, और वयम, वयम मतलब मैं। तो महाभारत में वर्णन है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, तर्क से वास्तविक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तर्क कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति अलग अलग तर्क दे सकता है, लेकिन निष्कर्ष क्या है वो नहीं जान सकते। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, स्वतंत्र रूप से मानसिक चिंतन से श्रुति यानी शास्त्रों का अध्ययन करना, क्योंकि शास्त्र भी विविध है, विशाल है, निगम कल्प तरोर विशाल वृक्ष के समान है, कितना अध्ययन कर पाएंगे, और वहां पर भी अलग 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 दिशाएं हैं, क्या सही है निष्कर्ष कैसे कर पाएंगे। नासव मुनिर यस्य मतम न भिन्नम, और किसी मुनिजन, मुनिजन मतलब मानसिक चिंतन जो करते हैं मेरे अनुसार, उनसे भी अगर हम शिक्षा लेंगे, जानकारी लेंगे, तो भी हम सही मार्ग को नहीं जान पाएंगे। यहां पर भी वर्णन है, अनुगमन करना है, लेकिन अनुगमन किन का करना है? जो प्रामाणिक परंपरा में शिक्षा ले रहे, एवं परंपरा प्राप्तम। प्रामाणिक शिक्षा का अर्थ है वो शिक्षा का उद्गम भगवान से हुआ है, वो शिक्षा के आदि स्रोत है भगवान श्री कृष्ण। तत्व ज्ञान, आज हम देखते हैं जो विषय है तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान का दर्शन दे रहे हैं, लेकिन परम तत्व कौन है? श्री कृष्ण। भगवान ऑलरेडी भगवद्गीता में स्थापित किए, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे ऊपर कोई परम तत्व नहीं है। तो वे परम तत्व, हाँ, वे ही ये ज्ञान को प्रदर्शित कर रहे हैं परंपरा के माध्यम से। हम देखते हैं चार परंपरा है, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। लेकिन ये संप्रदाय का आधार क्या है, वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण से। भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, भगवान ने ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया, भगवान ने ज्ञान शिव जी को प्रदान किया, और भगवान ने ये ज्ञान चतुष्कुमार को प्रदान किया। इस प्रकार वहां से ये ज्ञान आ रहा है परंपरा में। लेकिन आज हम देखते हैं परंपराएं खड़ी हो जाती हैं, लेकिन उस परंपरा का आधार नहीं है परंपरा। लेकिन परंपरा आई कहां से? कबीर परंपरा। तो कहां से आई? कबीर जी ने कहा। तो कबीर जी ने ज्ञान कहां से लिया? जैसे मैं कहूंगा कि मैं जो कह रहा हूं सही है, तो आप कहेंगे कैसे सही है, आपने ज्ञान कहां से प्राप्त किया? आपने अपने मानसिक चिंतन से प्राप्त किया, मन तथा इंद्रियों से, तो ज्ञान तो अप्रामाणिक हो सकता है, तो वो ज्ञान को हम कहीं पर भी खारिज कर देते हैं। तो इससे नहीं, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं तो परंपरा से ज्ञान दे रहा हूं। लेकिन परंपरा का उद्गम कहां से है? 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल? तो परंपरा का आदि कहां? एक साधारण जीव के द्वारा ये ज्ञान आ रहा है, तो वो ज्ञान प्रामाणिक नहीं है ना। कई लोग कहते हैं ये परंपरा है, वो परंपरा है, वो परंपरा है। परंपरा नाम लगाने से परंपरा नहीं होती है, परंपरा का आदि कौन है? हाँ, तो ये ज्ञान स्वयं भगवान के द्वारा, इसलिए भगवान कह रहे हैं इमं विवस्वते योगम। योगम ये दिव्य ज्ञान, ये मैंने सूर्यदेव विवस्वान को बताया, उसका आदि मैं हूं, और यही ज्ञान यथारूप बिना किसी बदलाव के भगवान सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से ये ज्ञान परंपरा में आ रहा है। तो भगवान आदि है और भगवान चुनते हैं किसको ये ज्ञान देना, भगवान चुनते हैं जो इस ज्ञान को यथार्थ स्वीकार कर सके और जो इस ज्ञान को किसी बदलाव के बिना आगे प्रदान कर सके। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं सैवाय मया तेध्य योग नष्ट परंतप। ये जो ज्ञान जो है, सैवाय मया तेध्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। अर्जुन, समय के साथ, समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से ये जो दिव्य ज्ञान है वो छिन्न भिन्न हो गया, नष्ट हो गया। तो ये ज्ञान पुनः मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये नई परंपरा मैं तुम्हारे माध्यम से स्थापित कर रहा हूं। क्यों? भक्तोसी में सखा चेति, तुम मेरे भक्त हो, मतलब भगवान से द्वेष नहीं करना, बिना किसी परिवर्तन के इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाना। भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम, इसलिए जो रहस्य है तुम ही समझ पाओगे और तुम्हारे माध्यम से ये रहस्य अन्य लोग समझ पाएंगे, वरना और कोई हमारे पास अवसर नहीं है इस दिव्य ज्ञान को समझना। तो हम देखते हैं भगवद गीता ऐसे ही सब अध्ययन करते हैं, कोई भी पुस्तक ले लिया और भगवद गीता का अध्ययन, लेकिन भगवद गीता भगवान बता रहे हैं परम रहस्य है, सब लोगों के लिए संभव नहीं है। हाँ, जैसे श्रील भक्ति सरस्वती महाराज बताते हैं ये शहद की बोतल है, जब तक ये शहद की बोतल को कोई हमारे लिए खोलेगा नहीं, हमारे लिए संभव नहीं है इस शहद को चखना, हम इसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे, हम कुछ और समझ पाएंगे। हाँ, तो वर्तमान समाज में ऐसी स्थिति है, लोग भगवद्गीता अध्ययन कर रहे हैं लेकिन प्रयास नहीं कर रहे ज्ञान प्रामाणिक परंपरा में से ग्रहण करें। इतना प्रयास करने के पश्चात भी आप देखें भारत में सब लोगों के घर भगवद गीता है, ऑलमोस्ट गीता प्रेस, और सब अध्ययन करते हैं, श्लोक बहुत अच्छे श्लोक उच्चारण करते हैं। ऐसे लोग होंगे जो पूरा प्रतिदिन भगवद गीता पूरा पारायण कर लेते हैं, 40 मिनट 50 मिनट पूरे 18 अध्याय, लेकिन वास्तव में भगवद गीता की शिक्षाओं को नहीं समझ पाते हैं। जैसे यहां कृष्ण बता रहे हैं, कृष्ण कैसे बता रहे हैं यहां पर, ये ज्ञान मैंने जिनको दिया है, जिन्होंने इसको आत्मसात किया है, उनके कार्यों को देखो और उनका अनुसरण करो, इस प्रकार से तुम जान पाओगे क्या करना और क्या नहीं करना। केवल विद्वत्ता से, संस्कृत व्याकरण से हम भगवद गीता को नहीं समझ पाएंगे। भगवद गीता की शिक्षा क्या है, जैसे भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, आपका मन मुझ में लगाओ, मत भक्तो मेरे भक्त बनो, मत द्याजी मेरी सेवा करो, माम नमस्कुरुहु मुझे समर्पित हो जाओ, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। कितने लोग कर पाते हैं उसको, 45 मिनट भगवद गीता पढ़ लिया और फिर 23 घंटे 15 मिनट क्या है उनका जीवन, पूरा भौतिक जीवन। जैसे भगवान बताते हैं कांक्षंतम कर्मणाम सिद्धिम, इस भौतिक जगत में सकाम कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, आज मेरे पास इतना है फिर ऐसा कैसे हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, हम नाना प्रकार की योजनाएं बनाते हैं और 45 मिनट भगवद गीता भी अध्ययन करते, इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में ये जो जीवन है कृष्ण को समर्पित होके करना। इसीलिए इस श्लोक में और इसके पश्चात के श्लोक में भगवान अर्जुन को बताएंगे किम कर्म किम अकर्मेति कवियोपि अत्र मोहिताः, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कवियोपि अत्र मोहिताः, कवियोपि मतलब विद्वत जन, जो विद्वान है, जब जो सब शास्त्र में पारंगत हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो भी नहीं जानते क्या कर्म है और क्या अकर्म है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, वो कर्म क्या है और वो कर्म करने की कला क्या है मैं स्वयं तुम्हें अर्जुन बताऊंगा, जिससे क्या होगा यज्ञात्वा वो जानने से मोक्षसे अशुभात्। ये जो अशुभ है, अशुभ मतलब इस जगत में हमारा जो भवबंधन है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो पूरी प्रक्रिया हमारी चल रही है उससे कैसे आप मुक्त हो सकते, मोक्षसे अशुभा। तो ये कृष्णा अर्जुन के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। तो अर्जुन का ये जो प्रश्न था क्या करना क्या नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना, भगवान मार्ग बता रहे हैं, पूर्व कैसे हुआ था उसका आप अनुगमन करो, और वो पूर्वज कौन है वो भी भगवान बता रहे हैं कि परंपरा में ये ज्ञान आ रहा है। तो अर्जुन का एक प्रस्ताव था कि ये करने से हम पाप कर्म में लिप्त होंगे, अर्जुन का ये प्रस्ताव था युद्ध नहीं करना, और उसके युद्ध नहीं करने में अर्जुन बहुत सारे कारण दे रहे हैं कि पहले तो वो अपने सुख के बारे में बता रहे हैं, यद राज्य सुख लोभ है ना, ये राज्य में जीत भी जाऊंगा सब मिल जाएगा मुझे, ये पूरी सृष्टि मिल जाएगी, ये जगत मिल जाएगा, फिर इसका आनंद किसके साथ लूंगा, कोई तो है नहीं, जो परिवार प्रियजन जो है वो है नहीं, तो इस राज्य का सुख क्या मिलेगा। और हम देखते हैं जगत में ये स्थिति है, हम लोग जो भी अभिलाषा करते हैं वो क्यों, और लोगों के साथ दिखाने के लिए, और लोगों के सामने तभी उसका सुख है ना, वरना उसको कोई सुख नहीं है। जैसे मान लीजिए ऐसी अवस्था हमारी कि हम एक द्वीप पर हैं, कोई नहीं है, एक ही व्यक्ति है, और उसका बहुत बड़ा महल है, बहुत सारा सोना है, बहुत सारे गाड़ियां हैं, सब कुछ है, भौतिक संसाधन सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो अकेला है, कोई नहीं है, तो उसे सुख मिलेगा, कोई सुख नहीं है। तो अर्जुन ये भगवान को प्रस्थान कर, उसी प्रस्तावना में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि ये युद्ध करने से अहित होगा, ये पाप है, और उसका परिणाम क्या होगा, नियतम नरके वासो, हमारा नियतम नरके वासो, नरक में हम रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद हमको बहुत अच्छे समझाते हैं कि अर्जुन वांटेड टू बिकम अ गुड मैन, अर्जुन कैसे व्यक्ति बनना चाहते थे, अच्छे व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति कैसे, इस भौतिक जगत के मानदंड पर अच्छे व्यक्ति बनना चाहते थे कि मैं ये करूंगा तो मुझे दुख होगा या अन्य लोगों को दुख होगा, तो इस आधार पर वो निष्कर्ष कर रहे हैं क्या सही है और क्या गलत है। जैसे हम देखते हैं, हम कीर्तन करते हैं, तो ये कीर्तन करने का उद्देश्य क्या है, भगवान की प्रीति के लिए। ये हरे कृष्ण कीर्तन क्या है, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के दिव्य नामों का गुणगान करते हैं कृष्ण की प्रीति के लिए। लेकिन अगर ये विषय अगर हम भूल जाएं, हाँ, तो हम भौतिक धरातल पे आ जाते हैं और फिर भौतिक धरातल के आधार पर हम सही और गलत सोचते हैं। मेरा समय जा रहा है, एक घंटा मैं कुछ कर सकता हूँ, कितना पैसा कमा सकता हूँ, बहुत सारे एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो मेरे लिए अच्छा क्या है, ये हरे कृष्ण कीर्तन नहीं करना, ये जो हरे कृष्ण कीर्तन हम करते हैं। और अन्य लोगों के लिए भी हम सोचे तो ये तो बहुत आवाज आएगी, लोग परेशान होंगे, ये हरे कृष्ण कीर्तन तो एक न्यूसेंस है, इस प्रकार की विचारधारा हो जाए। आसपास में लोग शायद सोचते होंगे हर सुबह 4:30 बजे हो जाते हैं और हर रविवार को भी दोपहर में इतने सारे लोग आते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन वास्तव में सही और गलत की पहचान क्या है, ये चेतना कृष्ण हमको देने के लिए आए। कृष्ण जो सबसे सबके मूल आधार है, भगवान कहते हैं कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे ये मणि लगे हुए हैं, उसका आधार क्या है, धागा है, तो इन सब का आधार मैं हूं, तो मुझसे जानो क्या करना क्या नहीं करना, किस तरह से सही और गलत की पहचान करना। तो वो कृष्ण भावनामृत प्रदान करने के लिए कृष्ण आए, और कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरी प्रीति के लिए जानो क्या सही क्या गलत है। हाँ, जैसे उदाहरण स्वरूप अर्जुन है, क्षत्रिय है, अर्जुन कोई भी चीज अपने मन से नहीं कर रहे हैं, जैसे मन में इच्छा आई किसी को मार दिया, इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। अर्जुन शक्तिशाली है, बलवान, महाबाहु, बार बार भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, महाबाहु, परंतप, जो अपने शत्रु है उनको पराजित कर सकते हैं, इतने शक्तिशाली हैं अर्जुन। लेकिन अर्जुन इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है कि अपना बल कहीं पर भी उपयोग कर रहे हैं, किसी को भी देख लिया, किसी को भी मार लिया, किसी से भी कुछ ले लिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं। अर्जुन हर एक चीज में सोच रहे हैं कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन की शुरुआत है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतात् पशु भी नरानम, पशु और मनुष्य जीवन में शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना ये सब समान है, लेकिन मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है धर्मो ही तेषां अधिको विशेषः, धर्मेन हीन पशु भी समानः। धर्म क्या है ये जानना, यहां से मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है हर एक चीज में। ये यहां हम परोधर्मों की बात करें, लेकिन हर एक चीज में धर्म का विचार, ये मनुष्य जीवन की शुरुआत है। उदाहरण स्वरूप अगर कोई कृषि कर रहा है तो कृषि सीखना महत्वपूर्ण नहीं है केवल कि ऐसे बीज डालना, ऐसे पानी डालना, ऐसे फसल होना, ऐसे फसल को काटना, इतना फसल आएगा, इतना बेचना, इस प्रकार से मेरा जीवन चलेगा, केवल ये विचार नहीं है। वो कार्य में सबसे पहले है धर्म क्या है, पृथ्वी मेरी संपत्ति नहीं है, ये प्रकाश मेरे द्वारा नहीं आता है, ये पानी मेरे द्वारा नहीं आता है, तो इन उच्चतर अधिकारियों के माध्यम से ये आ रहा है, तो किस प्रकार से ये पूरा कृषि कार्य करना धर्म का विचार है। ये पृथ्वी मेरे शोषण के लिए नहीं है। आज के समाज में धर्म का विचार नहीं है ना, पृथ्वी मेरी संपत्ति, डालो पेस्टिसाइड, चलाओ ट्रैक्टर, गाय से दूध निकालो, अभी बूढ़ी हो गई है, दूध नहीं देती है, भेज दो कत्ल खाने। सो कॉल्ड भद्र समाज जिसमें हम रह रहे हैं, हम लोग भी दूध पी रहे हैं, कहाँ का दूध है? जो भी डेयरी में गाय है, क्या उनको कोई रखने वाला है? हम प्रमोट कर रहे हैं गोहत्या। बहुत ही चतुराई से एडवांसमेंट के नाम पर हमने गाय को हमारे जीवन से बाहर कर दिया है, पृथ्वी को हमारे जीवन से बाहर कर दिया है। वहाँ पास बड़ी बड़ी कार हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च सेंटर हैं, सब कुछ है। इसलिए दूध कहाँ होता है? किसी डेयरी में हजारों गाय हैं, वहाँ आर्डर मशीन लगे हुए हैं, दूध निकल रहा है 6x3 की जगह में, और हम बस दूध पी रहे हैं, हमको 40-50 रुपए लीटर दूध मिल रहा है। लेकिन उसके पश्चात उसका क्या होने वाला है? यहाँ पर धर्म का विचार नहीं। लेकिन मनुष्य जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है, धर्म का विचार पहले है कि दूध मिल रहा है कैसे, क्या गौ सेवा से दूध मिल रहा है, या जो अनाज उत्पन्न कर रहे हैं क्या हम धर्म के विधि विधानों को पालन करके कर रहे हैं। जैसे संगीत है, कोई संगीत सीख रहा है तो उसका पहला आधार है, ये संगीत सीखने का उद्देश्य क्या है? हमारी इंद्र तृप्ति या भगवान की प्रीति? ये संगीत जो कला है उससे कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? इस तरह से आप देखिए, आर्ट क्राफ्ट जो भी सारी चीज है, इन सब का उपयोग था, हमारे गुण के आधार पर हमारी जो भी खूबी है, इन सब का उपयोग था भगवान की सेवा में। तो ये मनुष्य जीवन की शुरुआत है धर्म को समझना। लेकिन ये नहीं जानते हुए ये पूरा विकृत समाज जो अभी हम देख रहे हैं। तो अर्जुन, आप देखेंगे अर्जुन कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, धर्म क्या है, क्यों युद्ध करना चाहिए, ऐसे युद्ध नहीं करूंगा, ये पूरा पृथ्वी मिल जाएगी, पृथ्वी मिलने के पश्चात क्या होगा, इसका क्या परिणाम होगा? हाँ, तो ये प्रामाणिक प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं। और कृष्ण उनको बता रहे हैं कि तुम जो लाभ और हानि देख रहे हो वो भी अपने आप को केंद्र में रखते हुए, स्वार्थ, क्या तुमको अच्छा लगेगा और क्या लोगों को अच्छा लगेगा, इसको केंद्र में रख के तुम सोच रहे हो क्या सही क्या गलत है, या मेरी इंद्रियों को दुख होगा या अन्य लोगों की इंद्रियों को दुख। तो वो कृष्ण भावनामृत नहीं है, कृष्ण चेतना नहीं है, स्वचेतना, और ये एक बद्ध जीव का लक्षण है। तो ये शिक्षा देने के लिए, ये परम धर्म देने के लिए श्री कृष्ण यहां पर आए। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती जो महाजन है उन्होंने इस चेतना को समझा, कृष्ण भावना भावित होकर अपने कार्य किए, इसी प्रकार से आप भी इस कृष्ण भावनामृत को समझकर कार्य करो। वरना किम कर्मा किम अकर्मेति कवियोपि अत्र बोहिता, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं जान पाएगा क्या कार्य है और क्या कार्य नहीं है। बहुत सारे लोग हैं मुमुक्षु भी, मुमुक्षु भी का अलग अलग अर्थ हो सकता है अलग अलग विचारधारा के अनुसार। इसीलिए हम देखते हैं हमारे जो आचार्य गण हैं एक डिक्शनरी बनाना चाहते थे जिसमें हर एक शब्द का सटीक अर्थ है। आत्मा मतलब क्या, जैसे आत्मा मतलब मन, आत्मा मतलब शरीर, आत्मा मतलब हम जीवात्मा, और आत्मा का अर्थ है सभी आत्माओं की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण। तो मोक्ष भी मतलब जो मोक्ष मार्गी मतलब मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष केवल मिलेगा मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, बिना कृष्ण का आश्रय लिए, बिना कृष्ण को शरणागत लिए कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तपस्या करते हैं ना, मोक्ष मार्गी, कपड़े नहीं पहनते, एक से दूसरे स्थान कुछ बनाते नहीं है। भगवान कहते हैं न निरग्नि न चाक्रियः, इस जगत में कार्य करने से कार्यों का फल उत्पन्न होता है, और वो फल उत्पन्न होने के कारण हमको एक और शरीर धारण करना पड़ता है, तो हम कार्य ही नहीं करेंगे, हम इस पूरे समाज का परित्याग कर देते हैं, कोई कार्य नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं, किसी से संबंध नहीं रखेंगे, वन में चले जाएंगे, शरीर को यातनाएं देंगे, तपस्या करेंगे। कोई लोग उनको कहते हैं मुमुक्षु भी, मोक्ष मार्गी। लेकिन इस शब्द का वास्तविक अर्थ है जिसने कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया है। कृष्ण का नाम है मुकुंद, जो मुक्ति के दाता है, ये एक शास्त्र में वर्णन है, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशयः। बिना विष्णु के कोई हमको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति या हमारे कोई प्रयास या कोई भी प्रक्रिया हमको मुक्ति प्राप्त मुक्ति प्रदान नहीं हो सकती। हम कितना भी अपने आप को अनासक्त बताएं, मुझे धन से आसक्ति नहीं है, मुझे यश से आसक्ति नहीं है, मुझे किसी से आसक्ति नहीं, लेकिन आसक्ति भौतिक अस्तित्व में अवश्य रहेगी। मेरी आसक्ति है भगवान बनने की, मैं भगवान बन गए, ये बहुत बड़ी आसक्ति है, ये माया का आखिरी फांस है। सभी आसक्तियों में परम आसक्ति है, इतने महान हो गए हैं, सब उनके अनुयायी बन गए हैं, सब उनके पांव छू रहे हैं, लेकिन वो किसी को आश्रित नहीं है, कृष्ण को आश्रित नहीं है। तो यहाँ कृष्ण समझा रहे हैं, पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः, जो वास्तव में मुमुक्षुभिः है, जिसने कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया है, जिन्होंने इस कृष्ण भावनामृत को आत्मसात किया है, वो समझकर हमें अपने कार्य करने चाहिए, वरना सही और गलत की पहचान हम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे यहां हम देखते हैं, श्री प्रभुपाद समझाते हैं, मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहता है। एक व्यक्ति तो कार्य कर रहा है बिना जाने, इंद्रियों को तृप्त करने में और फंस रहा है, दूसरा व्यक्ति समझ रहा है हाँ इसमें समस्या है, तो कार्य ही नहीं किया जाए। जैसे अर्जुन उदाहरण दे रहे, तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयति केशव, हे कृष्ण आप कह रहे हैं कि ये कार्य करना उचित नहीं, तो आप मुझे इस घोर कार्य में क्यों लगा रहे हैं। तो ये नवीन अवस्था में हम नहीं समझ रहे हैं कि क्या कार्य है और क्या कार्य नहीं है, तो श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पर। किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। तो ये महत्वपूर्ण जो विषय है कृष्ण चेतना, उसको समझकर कार्य करना, वरना हमारे विचार से हम सही और गलत की पहचान करेंगे। इसीलिए पूरी भगवद गीता सुनने के पश्चात अर्जुन क्या कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए, क्योंकि अभी मैं समझ गया हूं नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो चुका है। वो मोह क्या था, जैसे प्रभुपाद शास्त्र यहां हम देख रहे हैं, अर्जुन वांटेड टू बिकम अ गुड मैन, ये मोह है, मैं इस समाज में अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसे लोग मुझे अच्छा कहें, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ये नहीं जानते हुए कि कृष्ण का क्या उद्देश्य, कृष्ण की क्या इच्छा है। इसलिए आप देखेंगे जो धार्मिक प्रवचन होते हैं उसमें कृष्ण को साइड में कर देते हैं, गुरुजी कहां से बोल रहे हैं, कृष्ण मंदे जगत गुरु, गुरु कौन है, यही कृष्ण तत्व वेत्ता, सही गुरु है जो कृष्ण तत्व को जानता है और कृष्ण के शिक्षाओं को प्रदान कर रहा है, वो गुरुजी है। हम सोचेंगे हम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अगर ये कहेंगे तो अधिकांश लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्यों ये बार बार कृष्ण को लेके आते, कृष्ण को लेके आते, कृष्ण सब और भी है, कृष्ण आपके भगवान हो सकते, हमारे भी भगवान है, सबके भगवान है, तो लोगों को अच्छा बनने के लिए हम क्या करते हैं कृष्ण को, तो वो प्रभु, वो परम, वो ईश्वर, इस प्रकार से लोगों को अच्छा लगेगा तो हम गुड मैन बनते हैं अच्छे, लेकिन कृष्ण को ये पसंद नहीं है, इसलिए कृष्ण सिखा रहे कृष्ण भावना भावित बनना, कृष्ण की इच्छा को जानना, कृष्ण की इच्छा कैसे जान पाएंगे, पूर्ववर्ती आचार्यों के माध्यम से, और उसके अनुसार हमारा जीवन हमें व्यतीत करना, क्या करना क्या नहीं करना। तो ये कुछ हमने यहाँ प्रस्तावित किया। हरे कृष्ण। अगर आपके कोई प्रश्न है इस विषय में तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
कर्म की सही परिभाषा क्या है?
क्या है
कर्म की सही परिभाषा?
भगवद गीता में भगवान बहुत अच्छे से समझाते हैं। 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मत कर्म परमः, कृष्ण के लिए कार्य करना। इसीलिए बार बार हमें समझना है, हमें प्रभुपाद ये सारी शिक्षा प्रभुपाद ग्रंथों में बहुत अच्छे से समझाई हुई है, हमें अच्छे से अध्ययन करना है। जैसे तृतीय अध्याय में वर्णन आता है, यज्ञार्थे कर्मणः अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। यज्ञ अर्थात विष्णु, यज्ञो वै विष्णु, विष्णु स्वयं यज्ञ है। तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना वो वास्तविक कर्म है, वरना अन्य जो कर्म है वो हमको इस जगत में बांधेगा। इसी अध्याय में आगे आएगा जो 9 श्लोक अभी भगवान बता रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं किम कर्म किम अकर्वेति, कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणतः अकर्मणस्तम बोधव्यम गहना कर्मणो गति ही। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये सब की परिभाषा दी गई है। तो एक स्तर पर हम समझे, कर्म अर्थात शास्त्रों में अनुमोदित कार्य, जो कार्य जिसका अनुमोदन शास्त्रों के द्वारा है, और उससे एक प्रकार का फल प्राप्त होता है, शुभ फल, जिसे हम कहते पुण्य कार्य। फिर एक प्रकार का कार्य है जिससे अशुभ फल, जो शास्त्र द्वारा अनुमोदित नहीं, शास्त्र द्वारा निषेध है, उसे कहते विकर्मण। लेकिन अगर हम कार्य करते हैं केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, तो उसका कोई कर्मफल जागृत नहीं होता है, और वो कर्मफल जागृत नहीं होने के कारण हम भव बंधन में फंसते नहीं। तो कृष्ण हमको ये शिक्षा देने के लिए आए, मत कर्म मेरे लिए कार्य करो। इसलिए भगवान कहते सर्व धर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। तभी ये कार्य कैसे करना, अभी हम इस अवस्था में हैं, हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमारी अलग अलग जिम्मेदारी है, प्रश्न आता है ये कार्य कैसे करना, कृष्ण के लिए कार्य कैसे करना। इसीलिए भगवान के महान प्रतिनिधि हैं जो हमको व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते हैं। मैं पिता हूं तो मेरा क्या कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है बच्चों का ध्यान रखना, उनका भरण पोषण करना, उनका विकास करना। लेकिन एक होगा कि मेरी अभिलाषा के अनुसार इसका भरण पोषण होगा, इसका विकास होगा। मैं चाहता हूं मेरा बालक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, करोड़पति बने, ये बने वो बने। एक दूसरा है, मैं इसका भरण पोषण करूंगा मेरे बालक की इच्छा के अनुसार, मेरे बालक को क्या चाहिए, वो ऐसा चाहता है, वो ऐसा चाहता है, तो हम उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अब यही कर्तव्यों को हम पूर्ण कर सकते हैं कृष्ण भावना भावित होकर, कृष्ण की क्या इच्छा है। मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये बालक जिसने मेरे घर में आश्रय लिया है वो कृष्ण का सेवक है। कैसे ये कृष्ण की सेवा में रत हो, जिससे अपना जीवन सफल कर सके और हमारा जीवन भी ये चीज को प्रदान करने में सफल हो सके, तो ये कार्य प्रदान करने के लिए कृष्णा आए हैं। तो उसको व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन में स्वीकार करना होगा।
उल्लेख या फिर अर्जुन के द्वारा कोई परंपरा
एक्चुअली सबसे पहले समझ में, ये ज्ञान कभी विलुप्त नहीं होता है। ये ज्ञान को भगवान पहले बताए हैं, इमम विवस्वते योगम, योगम ये जो दिव्य ज्ञान है, मैंने सूर्यदेव विवस्वान को बताया, हाँ इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम, मैंने बताया अव्ययम, ये ज्ञान है अव्यय ज्ञान है, ये ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। लेकिन वो ज्ञान किस माध्यम से आ रहा है, उस प्रणाली का परिवर्तन होता है। जैसे सूर्यदेव विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, उसी माध्यम से ये जो ज्ञान आ रहा है वहां पर कोई परिवर्तन हो सकता है। जैसे ये ज्ञान ब्रह्मा जी के माध्यम से आ रहा है, लेकिन एक ही उसी परंपरा में किसी व्यक्ति ने इसको प्रामाणिक रूप से ग्रहण नहीं किया और प्रामाणिक रूप से उसको प्रस्थापित नहीं किया, तो वो ज्ञान परिवर्तित हो गया, वो परंपरा वहां पर छिन्न भिन्न हो जाती है। एक चीज जी जी, तो वो हाँ ये है ना, ये वर्णन है शास्त्रों में, चत्वारो संप्रदायिनः कलौ उत्कल, एक श्लोक है, अभी मुझे उसका स्मरण नहीं है, पद्म पुराण में ये श्लोक है, वहां पर वर्णन है कि ये चार परंपरा में है और बताया है ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, चतुष्कुमार, और उनके वर्तमान समय के आचार्य गण कौन होंगे, और ये चार संप्रदाय उत्कल पुरी के स्थान में एक उनका मतलब वहां स्थान होगा, ये सब कुछ शास्त्र में वर्णन है। तो ये जो शिक्षा हम बता रहे हैं वो सब शास्त्रों के माध्यम से बता रहे हैं। तो भगवान ने इसी तरह से ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण हैं, भगवान स्वयं ये ज्ञान अन्य लोगों को भी प्रदान करते हैं, श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
प्रेमामृतमनिधि धीराधीर जन प्रियौ प्रियकरौ।